तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारा जो भगवत गीता है वो भगवत गीता यथारूप है। यथारूप भगवत गीता जो शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने इस पे टीका लिखी हुई है। गीता पे भगवत गीता को लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। तो भगवत गीता एक रहस्य है, वास्तव में इट इज ए सीक्रेट। रहस्य जो है वो सबके सामने ओपन नहीं होता। रहस्य को ओपन करने के लिए उसका पासवर्ड चाहिए रहता है। कोई भी चीज जो सीक्रेट होती है, गुप्त होती है, उसके लिए उसका पासवर्ड चाहिए रहता है। तो वो गीता का जो रहस्य है, वो गीता का रहस्य भगवान ने भगवत गीता में ही बताया है। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं, कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। ये जो भगवत गीता का रहस्य है, ये परंपरा से प्राप्त होता है। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये रहस्य जो है प्राप्त हो सकता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुमको ये रहस्य बता रहा हूं, उसका कारण क्या है? वो बोलते हैं, भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम्। बोलते तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, ये दो कारण है, इस कारण से मैं तुमको जो है ये भगवत गीता के बारे में बता रहा हूं। तो ये दो विशेष चीजें हैं भगवान के बारे में, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है और भगवान का सखा है तो ये भगवत गीता उसको समझ में आएगी। अभी भगवान का सखा बनना हमारे लिए तो मुश्किल है, एटलीस्ट भक्त तो हम बनने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान का सखा बनना मतलब भगवान पे विश्वास रखना कि भगवान जो कह रहे हैं वो सही है, जो भी भगवान बोल रहे हैं वो सही है, ये विश्वास रखना ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये विश्वास नहीं रखेंगे तो भगवत गीता हमें समझ में नहीं आएगी। उसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई मधु पात्र है जिसमें हनी रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है किसी बर्तन में, तो उस शहद को टेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस बर्तन को ही जीभ से चाट रहा है। तो जब तक कोई व्यक्ति उस शहद को नहीं टेस्ट करेगा, तब तक उसको रियल शहद का जो टेस्ट होता है वो कैसे पता चलेगा। इसलिए अगर आपको वो शहद का टेस्ट पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको भगवत गीता को परंपरा से ग्रहण करना पड़ेगा। और भगवत गीता में भगवान, चूंकि जो भी बोल रहे हैं वो सब भगवान के द्वारा बोला हुआ है, इसलिए उस पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, श्रद्धा हमारी किसी पे डेवलप तब होती है जब हमें वो लगता है कि वो व्यक्ति ऑथराइज्ड व्यक्ति है। जब तक हमें ये लगता है कि वो व्यक्ति ऑथराइज्ड नहीं है, तब तक हम उसके प्रति श्रद्धा डेवलप नहीं कर सकते। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी हमारी श्रद्धा जिसके प्रति हो जाती है, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण पर श्रद्धा रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के दिन में, जो आज हमारा पहला दिन है भगवद गीता का, अभी हम आप लोगों से इंट्रोडक्शन लेंगे, आप लोगों के नाम पूछेंगे इत्यादि इत्यादि, और उसके बाद हम अथॉरिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि कृष्ण जो है वो क्या अथॉरिटी है भगवद गीता को प्रेजेंट करने के लिए या नहीं, और अगर वो है तो हम उनके बारे में यहाँ पे आज क्लियर करेंगे और हम श्रद्धा डेवलप करेंगे। श्रद्धा डेवलप करने के साथ ही हम क्या करेंगे, हम उस भगवत गीता को जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी मेरा अनुरोध है आप सबसे कि कृपया अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और खाने में सब्जी कौन सी पसंद है आपको, आप ये भी बता सकते हैं, ये ही भी बताना ही है। ये चीजें आप बताइए कृपया, अपना नाम, आपका शहर और खाने में सब्जी आपको कौन सी पसंद है। यस प्रभु जी, मैं नाम लेता हूँ, वो लोग बोलते रहे। सबसे पहले आनंद अवस्थी जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ हरे कृष्णा।
मैं लखीमपुर खीरी से
जी,
और प्रभु प्रवचन में हमको बड़ी श्रद्धा है।
हाँ,
हमारे हमारे परिवार के मेंबर भी बहुत इंटरेस्ट होके
जी, ठीक।
और खाने में मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है।
खिचड़ी? अच्छा। खिचड़ी सारे सबका सार है, मतलब सारी चीजें मिला दो तो क्या बनता है, खिचड़ी बनती है। बहुत अच्छा,
वही पसंद
है। लेकिन मैंने मैंने सब्जी पूछी थी, तो कृपा अगर आपको सब्जी कोई ऐसी हो तो बताइए, नहीं तो आगे वाले लोग भी खिचड़ी तहरी बताना शुरू करेंगे।
आलू टमाटर मटर।
ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है बाबूलाल जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
मेरा नाम बाबूलाल यादव है।
हाँ।
मेरा नाम ऑफिस से हो
जी।
तो पनीर की भुजी बहुत।
जय हो। वेरी गुड, थैंक यू। आनंद शर्मा जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
जय।
और मुझे सब्जी में भिंडी बहुत पसंद है पर्टिकुलर।
भिंडी फ्राई वाली या फिर?
नहीं, फ्राई फ्राई और ड्राई रहे, जो थोड़ा सा कालापन आ जाता है तो अच्छा।
आप बनाते भी हैं लग रहा?
हाँ, कभी कभी ट्राई कर लेते हैं तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि इजी है बनाना उसे।
ओके ठीक है। भरत मकवाना जी। यस थैंक यू। भरत मकवाना जी। भरत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके।
हाँ हेलो।
हाँ बोलिए।
हेलो
जी जी बोलिए।
हाँ, मेरा नाम भरत मकवाना है। मैं वलसाड गुजरात से हूँ
जी।
और मुझे बैगन भरता की सब्जी पसंद है।
ओ ओके थैंक यू। दीप्ति चौहान। दीप्ति चौहान।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा नाम दीप्ति चौहान है, मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। और मुझे खाने में पनीर पसंद है।
जय। ठीक है। मिष्टी देसाई।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। जय। थैंक यू। धर्मिन।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी। धर्मिन, मेरा नाम धर्मिन गंगानी है। और मैं उदाड़ा से बिलोंग करता हूँ। और वैसे तो सारी सब्जी मुझे पसंद है, लेकिन टमाटर की सब्जी थोड़ा ज्यादा पसंद है।
केवल टमाटर? टमाटर सूप?
सेव टमाटर।
जय। ठीक है, थैंक यू। कमलेश जी।
हरे कृष्णा।
भिंडी। ओके नेक्स्ट। मनीषा भट्ट। हरे कृष्ण। आज एकादशी है, सब लोग, सबके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए सब्जियां सुन के। यस। जय।
लौकी की सब्जी अच्छी लगती, लौकी और पालक।
ओहो बहुत अच्छा। ठीक है, मनोज दीक्षित। मनोज दीक्षित, आप, मेरी आवाज आ रही है? मिलन मल्ल। मिलन जी। ओके। मोहित। हरे कृष्णा। परवल। ओके जी जी। नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। हाँ आपका हो गया। नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह को आवाज नहीं आ रही। नीता। नीता धवले। पूजा शर्मा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं राजस्थान से हूँ। वैसे तो सारी सब्जियां पसंद है, लेकिन कढ़ी कुछ ज्यादा पसंद है।
कढ़ी। ओके। पता नहीं था मुझे कि कढ़ी सब्जी में आती है। एनीवे, प्रणव चौहान। प्रणब चौहान।
हरे कृष्णा प्रभु।
यस प्रभु जी,
मेरा नाम प्रणब चौहान है और मैं बेसिकली भरूच गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मुझे भिंडी ज्यादा पसंद है।
भिंडी, ठीक है। प्रशांत प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु।
मेरा नाम प्रशांत नागरभोजे है और सब्जी में मुझे करेले की सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है।
ओह ओके। प्रतीक पवार। और जल्दी जल्दी।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस,
मेरे को, मैं प्रतीक पवार हूँ और मैं नौकरी से हूँ और मुझे सब्जी में बैंगन का भरता और भिंडी बहुत पसंद।
अच्छा ओके। प्रियंका भट्ट, क्विक।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं वापिस से हूँ और मुझे वीक वेजिटेबल या फिर उनको पसंद है।
ओके। संध्या उपाध्याय। संध्या उपाध्याय जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
मैं वापिस से हूँ।
जय
प्रभु जी, मुझे मेथी आलू और पालक आलू की सब्जी पसंद है।
अच्छा ठीक है, थैंक यू। समिता दत्ता। समिता मैम। सरिता पंडा। हरे कृष्णा। सरिता पंडा। ओके। शोभा मिश्रा।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
मेरा नाम शोभा मिश्रा हूँ, मैं वापस से हूँ और मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है।
ओके। शैलेश उपाध्याय।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
मैं वापस से हूँ और लौकी की सब्जी बहुत पसंद है।
ओके। श्रेयांशी पटेल।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
मैं आते हूँ और मुझे भिंडी की सब्जी पसंद है।
ओके। सोनी मिश्रा।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
मैं पापी से हूँ और मुझे दही आलू की सब्जी ज्यादा पसंद है।
ओके। सुंदर गोपाल दास। तो मेरा नाम सुंदर गोपाल दास है और पहले तो मुझे एक ही सब्जी पसंद हुआ करती थी, लेकिन अभी मंदिर में जो भी सब्जी बनती है सारी पसंद है। पहले जो मेरी सब्जी पसंद थी वो आलू टमाटर थी और अभी सारी सब्जियां पसंद है। ओके। सुषमा मिश्रा। सुषमा मिश्रा, ठीक है। विद्या राज।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
मैं दमन से हूँ और सब ऐसा कुछ स्पेशल सब्जी नहीं सब पसंद है।
अच्छा, मतलब आप जब जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो कुछ भी ले आते हैं। ओके ठीक है। कोई मिस हो गया? आंचल शर्मा
जी। जी प्रभु जी।
हाँ बोलिए।
मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मुझे जैक फ्रूट की सब्जी बहुत पसंद है, कटहल की।
कटहल, ओके। कोई और मिस किया क्या मैंने? नीता जी, नीता धवले।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ हरे कृष्णा। ठीक है। समिता मैम, समिता दत्ता, उनको आवाज आ रही मेरी? ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये सारी बातें पूछ के। एक्चुअली इन बातों का पूछने का कोई मेरे क्लास से कोई मतलब नहीं, बट आप लोग हमसे बात करने में थोड़ा आइस ब्रेक हो जाए उसके लिए है। यस समिता मैम, आप बोल रहे हैं? हाँ बोलिए।
हाँ, मैं संगीता दत्ता, मैं कोलकाता से हूँ
जी
और मुझे पनीर की सब्जी पसंद है। तो ये पहले कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था।
हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी आपने बता दिया और हमने सुन भी लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। मैंने आपको बताया कि हम लोग भगवद गीता, ये आज का सेशन जो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भगवद गीता को भगवान ने अर्जुन को सुनाया। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, हाँ 4.3 भगवद गीता। स एवायम मया तेद्या योग प्रोक्ता पुरातना भक्तो अस्मे सखा चेति रहस्यम हेतु दुत्तमा। भगवान कहते हैं आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम इस दिव्य विज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के प्रति फेत होना बहुत जरूरी है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके तात्पर्य में भगवद गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं शुरुआत में ही भूमिका में, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतः भगवद गीता के कथन अनुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथन अनुसार हमें सैद्धांतिक रूप से मतलब फिलोसॉफिकली इतना स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। इस भाव को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो ही हम विनीत भाव से भगवद गीता को समझ सकते हैं। तो ये जानना जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये भगवद गीता ये इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उन्होंने केवल 4 सालों में ना, जब वो यहां से अमेरिका गए तो अमेरिका में उन्होंने 1965 से प्रचार करना शुरू किया था, और थोड़े ही दिनों में उन्होंने बहुत सारे लोगों को चेंज कर दिया, विदेश के लोगों को चेंज कर दिया। जो विदेशी हमेशा नशे में डूबे रहते थे, हमेशा जुआ खेलते रहते थे, हमेशा मांस खाते रहते थे, उन सबको चेंज कर दिया और पुरुषों को धोती पहना दिया और जो स्त्रियां वहां की हुआ करती थी उनको साड़ी पहना दिया ना? इतना पूरा चेंज कर दिया, उनका जीवन जीने का जो तरीका था वो पूरा चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको भगवान कृष्ण के ऊपर फेथ थी, उनके ऊपर श्रद्धा थी, और वो भगवद गीता को उन्होंने एज इट इज प्रस्तुत किया। एज इट इज का अर्थ होता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, सेम भगवान वही मेथड वही मैसेज जो है वो प्रभुपाद जी ने हम सबको उस भगवद गीता यथा रूप में दिया। तो आज की हमारी शिक्षा नंबर 1 जो है वो ये है कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से हमें श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गीता है वो एक सूर्य के समान है। अभी सूर्य होता है जब आकाश में तो कभी कभी बादल भी रहते हैं, तो बादल जो है वो सूर्य को ढके रहते हैं। हालांकि सूर्य को बादल ढक नहीं सकते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सूर्य को बादल ने ढक दिया। तो जो लोग भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं वो उन लोगों की तरह है जो बादल के नीचे रह के सूर्य का दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कभी भी सूर्य को समझ नहीं पाएंगे। सूर्य को अगर समझना है तो बादल को हटाना पड़ेगा, तब सूर्य हमें डायरेक्ट दिख पाएंगे। तो वैसे ही जैसे कि उल्लू होता है, आउल, वो रात में उसको दिखाई देता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता। अगर आप लोगों में से कोई जाए और उससे बोले जाके अरे भाई सूरज निकलता है, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि सूर्य निकलता है, लेकिन वो जो उल्लू है उसको विश्वास नहीं हो सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवद गीता को जिस भाव में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है, सेम भाव में हमको भगवद गीता सीखने को मिले। तो सबसे पहले हमने जो बताया, ये उन लोगों की तरह है जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं फिर भी भगवद गीता सीखने का प्रयास करते हैं। वो उन लोगों की तरह है जो कि एक बर्तन जिसके अंदर शहद रखा हुआ है, उस बर्तन को बाहर से चाटने का प्रयास कर रहे हैं। जो शहद है वो शहद कभी उनको आस्वादन कब कर सकते हैं, जब उस बर्तन को खोला जाएगा, तब उसके अंदर जो रियल हनी है उसका स्वाद उनको मिल सकता है। लेकिन अगर बिना खोले उसको बाहर से कोई चाटने का प्रयास करता है तो उसको कभी भी वो जो हनी है उसका, शहद जो है उसका टेस्ट उसको प्राप्त नहीं हो सकता। जब उस बर्तन को खोला जाएगा और वो शहद सबको बांटा जाएगा, तब सब लोग जो है उस शहद को उसको टेस्ट कर सकते हैं और उसका आस्वादन करके उसको आनंद प्राप्त कर सकते हैं कि कितना अच्छा है इस शहद। तो ऐसे ही केवल अमेरिका में ही नहीं, अन्य बहुत सारे देशों में, अभी हमारे इस्कॉन के सेंटर पूरे विश्व में कई जगहों पे हैं, कई सारे देशों में हैं, बहुत कम देश ही ऐसे हैं जहां पे हमारा मंदिर नहीं है। तो उन सब जगह ऐसे ही ये भगवद गीता ऐसी बांटी गई कि वहां पे लोग जो हैं भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। पहले भारत में ही भक्त मिलने बहुत कठिन हुआ करते थे, जो शुद्ध भक्त हुआ करते थे, हाँ, लेकिन अभी विदेशों में भी ये जो है भक्ति प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता के द्वारा पहुंचाई है। एक बार की बात है, कोलकाता से समिता मैम बिलोंग कर रही हैं, तो कोलकाता में हमारी रथ यात्रा थी, इस्कॉन की रथ यात्रा थी। तो रथ यात्रा में हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आने के लिए, या फिर ऐसे कहें 120 देश के लोग वहां पे आए हुए थे उस रथ यात्रा में। तो ये उसके पहले 105 लोगों का विश्व रिकॉर्ड था जिसमें एक साथ 105 देश के लोग एक साथ आए हों। वो रिकॉर्ड किसका था बताएं आपको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो जब हम लोगों का ऐसा प्लान हुआ कि हम लोग 120 देश के लोग एक साथ आके भगवान कृष्ण के नामों का गुणगान करेंगे, जगन्नाथ जी का रथ जो है हम लोग खींचेंगे, तो हम लोगों ने नरेंद्र मोदी से कांटेक्ट किया, हमने उनको इन्फॉर्म किया, हमने कहा सर, किसी और ने बोला कि हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 120 लोग इस डेट को एक साथ यहां पे आएंगे और वो विश्व रिकॉर्ड बनेगा, तो हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। नरेंद्र मोदी इतना खुश हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा, वो बोले कि अभी तो आपने लेट बताया, नहीं तो हम भी उस रथ यात्रा में आने का प्रयास करते, तो उनको इस बात की बहुत खुशी हुई। तो ये वास्तव में जो हम लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, पूरे विश्व में भाईचारा की बात करते हैं, वो केवल एक ही चीज से संभव है, जब हर कोई भगवान का भक्त होगा। जब तक भगवान की भक्ति हमारे सेंटर में नहीं होगी, तब तक हम सब लोग जो है ब्रदरहुड, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू सिख ईसाई, ये सब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है वो कृष्ण जब सेंटर में आएंगे, भगवान जब सेंटर में आएंगे, तभी संभव हो सकता है। तो भगवान जो है वो सबके पिता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ममय वांशो जीव लोके, ये जो जीव है वो सारे मेरे अंश हैं, पिता का अंश उनका पुत्र होता है। तो ठीक वैसे ही भगवान जो है वो हम सबके पिता हैं। अभी अगर हम सोचें कि हमारा सोर्स कौन है, हमारा स्रोत कौन है, तो हमारा स्रोत हमारे पिताजी, हमारे पिताजी के स्रोत उनके माता पिता, उनका स्रोत उनके माता पिता, इस तरीके से अगर आप पीछे 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 जाते जाएंगे तो एक जगह तो कहीं पर रुकना पड़ेगा ना, जहां से सब कोई निकला होगा वो है भगवान। इसलिए इस श्लोक में जो कि ब्रह्म संहिता में आता है, बोला गया है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम्। ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो शरीर है वो हमारी तरह हार्ड मास का नहीं बना हुआ है, उनका शरीर कैसा है? सच्चित आनंद से भरा हुआ है। और वो अनादिर आदिर गोविंद, वो सबके आदि हैं फिर भी वो अनादि हैं, और क्या है? सर्व कारण कारणम। किसी कारण के पीछे कोई और कारण होता है, उसके पीछे कुछ और कारण होता है, उसके पीछे कुछ और कारण होता है। अगर हम ऐसे करके 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 लास्ट में पहुंचेंगे तो कारण कौन निकलेगा? भगवान कृष्ण। ये यहां पे बताया जा रहा है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण जो है वो क्या है? सारे कारणों के कारण है। ये थोड़ा फॉन्ट जो है कलर फॉन्ट का येलो होने के कारण शायद दिख नहीं रहा होगा सही से। एनीवे, भगवान कृष्ण का जन्म और भगवान कृष्ण की लीलाएं उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में और भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो ये प्रूव हो जाता है कि भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये प्रूव हो जाता है जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं। तो शुरू शुरू में जब मैं भक्ति में आया था, कुछ 2009-10 की बात है, तो मैं बहुत सारी संस्थाओं में गया था, बहुत सारी संस्थाओं में, वो संस्था कोई बोलती थी हिमालय पे जाओ, कोई कहता था कि समुद्र के किनारे जाके तप करो, अन्य अन्य बहुत सारी संस्थाएं। और सब ज्यादातर संस्थाएं क्या बोलती थी कि आपको जो है अपनी इंद्रियों से दूर रहना पड़ेगा, इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना पड़ेगा, इंद्रियों को जो है आपको, जैसे आपको अच्छा दिख रहा है उसको देखना छोड़ो, आपको कुछ अच्छी स्मेल आ रही है आप उसको उसको स्मेल लेना छोड़ दो, आपको कुछ खाने में अच्छा लग रहा है आप उसको छोड़ दो, ये सब सारी चीजें बता रहे थे। पर जब मैं इस संस्था में आया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ, तो इसमें बताया गया कि आप अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा सकते। हम सोच रहे थे कि सेंसेस जो है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो हमारे दुश्मन है, लेकिन वास्तव में उनको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ये केवल मुझे इसी संस्था में मिला, कई संस्थाओं में मैं गया लेकिन ये मुझे इधर ही मिला। कैसे? हमारे मंदिर में प्रसाद खिलाया जाता है सबको, प्रसाद मतलब केवल वो इलायची दाना नहीं बल्कि क्या, फूल प्रसाद, जैसे अभी आप लोगों ने सब्जियां गिनाया, सारी सब्जियां बनती हैं और कितनी सारी स्वीट्स बनती हैं, क्या क्या नहीं बनता, वो सारा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और भगवान के नामों का कीर्तन होता है, और भगवद गीता लोगों लोगों तक तो पहुंचाई जाती है। ये सारी चीजें जो है वो प्रेरित करती हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सके। तो मेरे मन में था कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, जो मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूं, थोड़ा बहुत मुझे आ रहा है गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, वो ज्ञान ज्यादा लोगों में बांटा जा सके। लेकिन जब और संस्थाएं बोलती थी हिमालय पे चले जाओ या समुद्र किनारे चले जाओ, हाँ, तो लगता था यार वहां पे जाके क्या होगा, मैं अकेले रहूंगा और किसी से बात करने तो कोई नहीं मिलेगा, कैसे भगवद गीता या जो हमारे वेद शास्त्र है उनका ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो इस संस्था में पता चला कि नहीं, आप किसी सिटी में रह के, अभी तो ये कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके कारण क्या, मैं वापी गुजरात में रहते हुए इतनी सारी जगहों पे कनेक्टेड हूं, उत्तर प्रदेश, इवन ऑस्ट्रेलिया से भी एक भक्त हैं, तो ये सारे लोग कनेक्टेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान जो है वो इतना मधुर है, इतना सुमधुर है कि वो सब लोग जानना चाहते हैं भगवान के बारे में। और आपको बताऊं, भगवद गीता ज्ञान अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बहुत, वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हो, भगवान की आप लोगों के ऊपर वास्तविक कृपा है कि ये भगवद गीता का ज्ञान जो है आप ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है वास्तव में, हर कोई, इवन भारत में रहते हुए भगवद गीता को खोल के देखने वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने खोल के कभी नहीं देखा होगा भगवद गीता। कई लोग हमें मिलते हैं, बोलते हैं अरे भगवद गीता को तो हमने लाल कपड़े में बहुत अच्छे से मंदिर में रखा है। लाल कपड़े में क्यों रखा भाई, उसको वो पढ़ने के लिए? बोले नहीं नहीं पढ़ते नहीं है, तो फायदा नहीं है कुछ, भगवद गीता आपके पास है आपको उसको पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से ये संस्था, इस्कॉन संस्था से भगवद गीता का प्रचार करने का जो है वो एक साधन मिला। अभी क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ता रहता हूं, मेरा ज्ञान जो है बढ़ रहा है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, और उसको मैं दूसरों से शेयर भी कर पा रहा हूं, नहीं तो हिमालय पे जाके अकेले बैठ के बस हो गया। अपना तो भला हो जाएगा लेकिन बाकी लोगों का क्या, जो बेचारे नहीं जा सकते हिमालय पे उनका क्या, है कि नहीं? तो इसलिए ये जो भगवद गीता है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वास्तव में एक यज्ञ है। यज्ञ जो है, इसको यज्ञ को बोला जाता है स्वाध्याय यज्ञ, अपने आप पढ़ने का यज्ञ। तो हम भगवद गीता को यहां पे पढ़ेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये जो सेशन हमने रखा है ये केवल 21 दिनों का है, 21 दिनों के सेशन में हम लोग केवल ओवरव्यू को कर पाएंगे भगवद गीता का। हालांकि ओवरव्यू भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवद गीता का सार हमें समझ में आएगा, लेकिन भगवद गीता की डिटेल स्टडी भी होती है जिसमें आपको एक एक श्लोक के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक एक श्लोक को समझने का आपको मौका मिलेगा। तो हम वो भी इसके बाद करेंगे, ये सेशन खत्म होगा तो आप लोगों में जो भी इंटरेस्टेड होगा उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, भगवान भगवद गीता में 4.9 में बोलते हैं, 4 chapter 9 number verse 9 number का श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुना। भगवान कहते हैं कि मेरा जो आविर्भाव यानी कि मेरा जो जन्म है और साथ साथ में मेरे जो कर्म है यानी जो मेरे एक्टिविटीज हैं, इन दोनों की जो दिव्य प्रकृति को जानता है, दिव्य प्रकृति मतलब ये सामान्य नहीं है, हम लोगों का जन्म सबका एक जैसा जन्म होता है, नंगे पैदा होते हैं। भगवान का जन्म कैसा होता है? तो भगवान चतुर्भुज और पूरा बाकायदा कपड़े पहने हुए, माला पहने हुए, सारे आयुधों को लिए हुए, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है, इस तरीके से भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान का जन्म और भगवान के कर्म भी, हम लोगों के कर्म क्या है, क्या कर्म हमारे हैं सुबह से लेकर शाम तक के हमारे कर्म? वही खाना पीना सोना नौकरी करना। लेकिन भगवान के जो कर्म है, खास करके भगवान ने जो लीलाएं किया है, वो जानना कि वो भगवान के जो लीलाएं हैं वो सामान्य नहीं है, वो डिवाइन है, वो ट्रांसेंडेंटल है, ये जानना जो है, जो जान लेता है वो क्या करता है, वह पुनः जन्म उसका नहीं होता है, उसको मेरा सनातन धाम प्राप्त होता है, जहां पे भगवान हमेशा रहते हैं ऐसी जगह वो पहुंच जाता है ना। ओके, भगवद गीता वास्तव में क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न है और उसके आंसर है। सबसे पहले संजय ने प्रश्न पूछा, सॉरी धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा संजय से, और उसके बाद संजय ने उत्तर देना शुरू किया, उसमें बीच में कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ, अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे और कृष्ण ने उसका उत्तर दिया। इस तरीके से भगवद गीता एक संवाद है। तो एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारे संस्था के जो आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य, वो एक बार एक गीता समिति में गए थे, जहां पे कई सारे वक्ता थे जो गीता के बारे में प्रवचन दे रहे थे। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी को भी बुलाया गया, प्रभुपाद जी भी वहां पर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे कृष्ण की एक भी फोटो नहीं लगी हुई है, एक भी पिक्चर कृष्ण की नहीं है। तो उन्होंने कहा वहां के लोगों से, भाई जब आप कोई राजनीतिक मीटिंग करते हो तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब की फोटो लगाते हो, अभी आप ये गीता समिति की मीटिंग कर रहे हो, गीता समिति हो रही है, कम से कम एक फोटो तो कृष्ण का होना चाहिए, एक फोटो तो कृष्ण का होना चाहिए, क्यों नहीं है? तो वो क्या बोले, बोले नहीं नहीं नहीं, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम निराकार को मानते हैं। अब निराकार क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। निराकार मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है। जब भी निराकार शब्द आता है तो आप लोग ये गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए कि निराकार शब्द का अर्थ है भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है। भौतिक मतलब मेटेरियल, ये जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जो पांच तत्व हैं, भगवान इनसे मिलकर नहीं बने हैं। लेकिन भगवान का आकार है, कैसा आकार है? आध्यात्मिक आकार है भगवान का। आध्यात्मिक आकार मतलब हमने भी पढ़ा, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा। भगवान का आकार कैसा है? सच्चिद आनंद से बना हुआ है। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो शरीर है, वो कैसा है? सच्चिद आनंद से बना हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा, जरा आप भगवद गीता में बताइए कि भगवान ने कहां पे कहा है कि मैं निराकार हूं, कहां पे कहा है कि आप निराकार पे विश्वास कीजिए? पूरी भगवद गीता में कहीं पे भी नहीं। और इसके उल्टे प्रभुपाद भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे से सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, हाँ मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। निराकार कहां? भगवान बोले मेरा मेरे, हाँ तो निराकार का शब्द कहां से आएगा, निराकार कहां से आ गया? तो इसलिए थेरिटिकली सैद्धांतिक रूप से हर व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि कृष्ण जो है वो भगवान है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कृष्ण जो है कैसे भगवान है। तो लीलाएं हमने देखी अभी, ये जन्म लीला थी भगवान की, जब भगवान प्रकट हुए कंस के जेल में माता देवकी के गर्भ से, तो भगवान एक शिशु के रूप में और साथ साथ में चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज विष्णु, अब देखिए ये सामान्य है नहीं, कपड़े पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, मोरपंख लगा हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म है, कैसे सामान्य है? इसलिए भगवान के जो जन्म कर्म है वो कैसे हैं? दिव्य हैं। वो हमारी तरह नहीं है, हम मनुष्यों की तरह नहीं है, वो दिव्य है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हम लोग अपने अपने कुछ स्तर तक हम लोग एक नियंत्रक होते हैं, कंट्रोलर होते हैं ना, हर कोई कंट्रोल करता है। जैसे कोई पति है वो अपने घर मतलब घर का मुखिया है वो अपने घर को कंट्रोल करता है, कोई टीचर है वो क्लास को कंट्रोल करता है, कोई प्रिंसिपल है पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, कोई संस्था का आचार्य है वो संस्था को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से सब लोग अपने अपने में कुछ ना कुछ कंट्रोलर है। ऐसे चींटी भी होती है ना, वो भी अपने आप को कंट्रोलर समझती है, वो भी मैं भी कुछ कंट्रोल कर रही हूँ, हाँ ये चीनी का दाना जो मैं लेके जा रही हूँ ये मैं इसको कंट्रोल कर रही हूँ, चींटी भी समझती है। लेकिन आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए उसकी सारी कंट्रोलरशिप चली जाएगी, हाँ वो मर जाएगी बेचारी चींटी। ऐसे ही मनुष्य भी अपने आप को छोटा मोटा कुछ ना कुछ कंट्रोलर समझता है। ऐसे ही जो डेमीगॉड्स हैं, जो देवता हैं, वो भी अपने आप को कुछ कंट्रोलर समझते हैं। जाहिर सी बात है चींटी से ज्यादा कंट्रोलर बड़े कंट्रोलर हम हैं, और हमसे बड़े कंट्रोलर कौन है, देवता लोग हमसे बड़े कंट्रोलर हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो कौन है, वो टॉप मोस्ट है। ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान कृष्ण क्या है, ईश्वर परमा टॉप मोस्ट है। साथ साथ में उनके विग्रह के बारे में भी हमने सुना, बताया कि सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह कैसा है, सच्चित और आनंद से भरा हुआ। साथ साथ में अनादि, अनादि मतलब उनका कोई आदि नहीं है। जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन में कोई बोगी रहती है, उस बोगी को उसके आगे वाली बोगी खींच रही होती है, उस बोगी को उसके आगे वाली बोगी खींच रही होती है, ऐसे करते 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 अगर लास्ट में आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, इंजन है वो इंजन सारी बोगियों को खींच रहा है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण जो है वो क्या है, अनादि है। अभी हम लोग देखते हैं गाय को, देखते हैं गाय दूध देती है, कैसे दूध देती है, घास खाती है। घास कहां से आती है, घास जो है बारिश से आती है। बारिश कहां से आती है, बारिश बादलों से आती है। बादल कहां से आते हैं, बादल सूर्य से आते हैं। हाँ, सूर्य जो है वो क्या करता है, समुद्र के पानी को या अन्य पानी को वो क्या करता है, खींचता है और वो जो है बादल बना देता है। तो फिर सन का, सूर्य का सोर्स क्या है, सूर्य के सोर्स है भगवान। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यस्या गया ब्रह्मति समृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की आज्ञा से सूर्य जो है रोज निकलते हैं और कभी भी लेट नहीं होते। हम लोगों का अलार्म कभी कभी बजता है, हम लोग बंद कर देते हैं, लेकिन सूर्य के साथ कभी ऐसा नहीं होता, वो एक दिन भी अपना अलार्म जो है वो बंद नहीं करते, हमेशा टाइम से। इतना दूर है, अब सोचिए कितना दूर है, हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं, कई लाख गुना बड़े हैं बोलते सूर्य जो है, और इतना दूर है और साथ साथ में वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर है, कोई कहता है कि सूर्य घूम रहा है पृथ्वी स्थिर है, जो भी है अगर हम कंपेरेटिवली देखेंगे, हम देखेंगे भाई कि कोई ना कोई तो घूम रहा है, तो इतनी स्पीड में घूम रहा है, हम लोगों ने तो नहीं बनाया उनको। सूर्य देव को हम आप में से किसी ने क्रिएट नहीं किया है, हम लोगों में से किसी ने नहीं बनाया, किसने बनाया, वो भगवान, वो भगवान ने बनाया। तो इस तरीके से हमें भगवान की ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा है, वट वृक्ष। बरगद का पेड़ इतना विशाल होता है, बड़ा बड़ा बरगद का पेड़ होता है, उस बरगद के पेड़ में एक छोटा सा फल निकलता है, उस फल को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। अब देखिए हर बीज के अंदर भगवान ने इतनी ताकत दी है कि वो एक नया पेड़ लगा सकता है, एक नया पेड़ उससे निकल सकता है। और मान लीजिए आपने एक बीज लिया, उससे एक पेड़ लग गया, और उस पेड़ में फिर से बहुत सारे फूल फल निकले, और उन फलों में कितने सारे बीज हैं, और उन सारे बीजों से कितने सारे बरगद के पेड़ निकल सकते हैं। ये भगवान की शक्तियां हैं, इन शक्तियों के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, और फिर भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा डेवलप होगी, तब हम भगवान को और भगवान के दिए हुए वक्तव्य भगवद गीता को समझने में समर्थ होंगे। तो भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगिति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। मेरे जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, उनके बारे में जो जान लेता उसको फिर से बर्थ भी नहीं लेना पड़ता, जन्म नहीं लेना पड़ता उसको। फिर एक बार की बात है, भगवान कृष्ण यमुना नदी के किनारे मिट्टी खा लिए, तो बलराम जी ने शिकायत किया कि माता यशोदा से कि कृष्ण ने मिट्टी खा ली है, तो माता यशोदा ने उनको मुंह खोलने को बोला। जब भगवान ने अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। हम लोग अपना मुंह खोलेंगे तो क्या दिखाई देगा, भगवान के मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिख रहा था, कैसे सूर्य, कैसे चंद्रमा, कितने सारे तारे, कितने सारे ग्रह, कितने सारे उपग्रह, और फिर उन्होंने देखा मथुरा डिस्ट्रिक्ट भी देखा, वृंदावन भी देखा, वृंदावन में जहां पे यमुना जी थी वो भी देखा एरिया, और उन्होंने अपने आप को भी उसके अंदर देखा। कौन ऐसा कर सकता है, कोई ऐसा कर सकता है अपने सर अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड को दिखाए? ये वास्तव में ब्रह्मांड भगवान के मुख के अंदर है, इसलिए वो दिखा सकते। ओके, भगवान पार्थ सारथी है। पार्थ सारथी, पार्थ अर्जुन का नाम है और सारथी मतलब उनके रथ को हांकने वाले, तो भगवान है पार्थ सारथी, भगवान अर्जुन के सारथी। अभी इतने बड़े भगवान, इतना विशाल शक्तियों को धारण करने वाले ये भगवान क्या बने, एक व्यक्ति का ड्राइवर, ड्राइविंग कर रहे हैं, अर्जुन का रथ हांक रहे हैं? तो ये भगवान, अभी हम लोग जब 11वें अध्याय में पहुंचेंगे तो यही अर्जुन का जो रथ हांकने वाले भगवान है ये अपना विराट रूप दिखाएंगे, विश्व रूप या विराट रूप। उस विराट रूप में ना तो शुरुआत कहीं पे पता है कहां से है और ना उसका अंत कहां पे पता चलता है, ऐसा विराट रूप भगवान अर्जुन को दिखाएंगे। तो ये भगवान पार्थ सारथी, भगवान की महानता। भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करता है, भगवान को जो ऐश्वर्य है उससे प्रूव होता है कि भगवान सर्वोपरि है, उनके ऊपर कोई नहीं है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे ऊपर कोई और है ही नहीं, आई एम सुप्रीम। तो छह चीजें हैं ऐश्वर्य के अंदर में जो आती हैं। जैसे कोई बोलता है बलवान, तो बलवान मतलब जिसके पास बल होता है उसको बलवान बोला जाता है। ऐसे कोई बोलता है विद्यावान, तो जिसके पास विद्या होती है उसको विद्यावान बोला जाता है। ऐसे ही भगवान जो बोला जाता है, भगवान जिसके पास भग है, भग मतलब होता है ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य का मतलब होता है ये छह चीजें, देखिए आपकी स्क्रीन पर, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। ये छह चीजें जिसके पास पूर्ण रूप से मौजूद हैं उसको हम बोल सकते हैं कि वो भगवान है। जिसके पास ये सारी छह की छह चीजें पूर्ण रूप से मौजूद हैं, पूर्ण मतलब परफेक्ट 100% सारी की सारी उनकी ही है, उनको क्या बोल सकते हैं, हम भगवान बोल सकते हैं। भगवान पहला क्या है, संपत्ति। भगवान कोई करोड़पति होता है, कोई अरबपति होता है, भगवान क्या है, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी के पति हैं, सारी लक्ष्मी जो है उनकी ही है, तो सारी संपत्ति जो है वो भगवान की है वास्तव में। बल, भगवान से ज्यादा बलवान कोई भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति भगवान से ज्यादा बलवान नहीं, ऐसा करके भगवान ने कई सारी लीलाओं में इसको प्रदर्शित किया। सारी चीजें सब भगवान से ही निकलता है, सारी सृष्टि जो है भगवान से होती है, क्रिएशन सृष्टि होती है, भगवान इसको मेंटेन भी करते हैं और समय आने पे प्रलय भी करते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही करने वाला हूं और मैं ही इसका साक्षी हूं, और कोई समय होता नहीं है जब मैं कर रहा होता, सब कुछ मुझ पे डिपेंड करता है सब कुछ। यश, भगवान से ज्यादा फेम जो है किसी का नहीं है, भगवान सबसे ज्यादा फेमस है। क्यों? अब देखिए कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी मत हो, कोई भी जाति हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, सब लोग भगवान की तो भक्ति करते ही, अभी उनको ये नहीं मालूम है किसकी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो है उनका, भगवान, अल्लाह, गॉड, समथिंग, तो वो सब किसकी भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में मेन कौन है, भगवान ही है। और अगर हम देखें 5000 साल पहले भगवान लीलाएं करके गए हैं, अभी 5000 सालों से पता नहीं कितनी भागवत कथाएं हो रही हैं, कितनी रामायण की कथाएं हो रही हैं, इन सारी कथाओं में किसका गुणगान किया जा रहा है? कृष्ण का गुणगान किया जा रहा है, राम का गुणगान किया जा रहा है। तो फेम, यश, सौंदर्य, भगवान से सुंदर कोई भी नहीं है, नोबडी, इतना सुंदर कोई भी नहीं है कृष्ण से ज्यादा सुंदर, इसलिए सारा सौंदर्य जो है भगवान का ही। ज्ञान, ज्ञान की तो बात ही मत कीजिए, ये जो भगवत गीता हम लोग अभी 21 सेशन में पढ़ेंगे, ये भगवान ने अर्जुन को मात्र 45 मिनट में सुनाया था, 700 श्लोक, और ये श्लोक कोई ऐसा नहीं रट के सुना दिया, पूरे फिलोसफी अभी हम लोग पढ़ेंगे और शायद अपने जीवन में कभी समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, इन सारे श्लोकों को शायद नहीं समझ पाएंगे। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि इन्हीं श्लोकों को बार बार पढ़ते रहते हैं और उनमें रस लेते रहते हैं, हाँ, फिर भी इनके नए नए मीनिंग जो है प्रकट होते रहते हैं। ऐसा ज्ञान को भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट के अंदर सुना दिया, सुबह सुबह जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने था। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट है वैराग्य। वैराग्य इतना कि कल पता है कि कल मुझे मथुरा जाना है, और एक बार मथुरा गए कभी वृंदावन आए ही नहीं। भगवान है फिर भी वो अर्जुन क्या क्या बन रहे हैं? सारथी बन रहे हैं, सारथी मतलब फोर्थ क्लास एम्प्लॉई, वो बनने के लिए भगवान रेडी हो गए। तो ये 6 विभूतियां जो हैं इनको बोला जाता है भग, जो जिसके अंदर ये संपूर्ण मात्रा में मौजूद हैं उसको हम भगवान बोल सकते हैं। अभी हम लोग ये चीजें देखते हैं, जैसे कोई सुंदर दिखता है हमको, कोई बलशाली भी दिखता है, कोई संपत्ति वाला भी है, किसी का फेम भी है, कि कोई ज्ञानी भी है, कोई वैरागी भी है, लेकिन इन सबका कैसा वैराग्य, इनका सबका संपत्ति कैसे? क्षणिक है, टेम्पररी है, लेकिन भगवान इसको परमानेंट धारण करने वाले हैं। ठीक है, ओके। भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मैं सारे यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता हूं, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, साथ साथ में समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर हूं। उन सबका ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर का भी कंट्रोलर कौन है? मैं हूं। सर्वलोकम महेश्वरम, ईश्वरम मतलब कंट्रोलर, महेश्वरम मतलब कंट्रोलर का भी कंट्रोलर, कौन से? सर्वलोक, सारे लोक जितने भी हैं, चाहे स्वर्ग लोक हो, पाताल लोक हो, जन लोक हो, ब्रह्म लोक हो, सत्य लोक, सारे लोकों का मैं क्या हूं? महेश्वरम। साथ साथ में सुहृदम सर्वभूतानाम, सबका भला चाहने वाला मैं ही हूं। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, बैठ हम हृदय में रहते हैं और हमारा सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, सबसे पड़ोस है हमारे, फिर भी क्या है, हम उनको इग्नोर करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं सबका हितैषी हूं। भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस आए, हम उनके साथ रहें, लेकिन हम लोग किसी कारणवश जो है यहां पे इस भौतिक संसार में रह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो जान लेता है वो भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर लेता है, उसको भौतिक दुख जो है वो कष्ट प्रदान नहीं करते। भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, हे अर्जुन मैं तुमको और क्या बताऊं, मैं जो हूं एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर लेता हूं। अभी हम लोग मान लीजिए कोई कहीं का मैनेजर होता है, कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर होता है, MD होता है, या कुछ छोटी छोटी पोस्ट भी होती है, कितनी टेंशन होती है, लेकिन भगवान क्या बोला, एक अंश है निश्चित जगत, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेते बिल्कुल भगवान, और बिना टेंशन लिए वो क्या कर रहे हैं, इसको धारण किए हुए हैं व्याप्त होते हुए। भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है, कई सारे आचार्यों ने भगवान की भगवत्ता को स्वीकार किया है, जैसे ये वेदव्यास जी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा, सारे पुराणों को इन्होंने लिखा। ये क्या बोलते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इस श्लोक के पहले वेदव्यास जी ने कई सारे अवतारों के बारे में बताया था, राम जी के बारे में बताया, नरसिंह भगवान के बारे में बताया, वराह भगवान के बारे में बताया, वामन देव के बारे में बताया, इस तरीके से कई अवतारों के बारे में बताया, कृष्ण के बारे में बताया। फिर बोलते हैं ये जो मैंने अभी तक बताया ये तो भगवान के अंश हैं और कला हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान है। अर्जुन, अर्जुन बोलता है आहुस्ता मृषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषिमे। अर्जुन जब भगवान अपना अपने विभूतियों के बारे में बताते हैं तो अर्जुन कहता है मैंने सुना था ये सारी चीजें, नारद जी ने बताया था, असित ने बताया था, असित ऋषि ने बताया था, देवल ऋषि ने बताया था और व्यास जी ने भी बताया था और अभी आप भी बता रहे हैं स्वयं चैव ब्रवीषि में, आप भी इस चीज को बता रहे हैं कि आप जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ओके, उसके बाद अन्य महान आचार्य जैसे यह है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य ने भी कृष्ण को भगवान बताया और फोटो नहीं आया, रामानुजाचार्य, हाँ रामानुजाचार्य बहुत विख्यात संत, वास्तव में वो बलराम जी के अवतार हैं, उन्होंने भी भगवान कृष्ण को माना। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण की भक्ति करने को सबको बोले चैतन्य की कृष्ण भगवान है। तो इस तरीके से सभी ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही वह परम पुरुष भगवान है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में 16 चिन्ह हैं। कितने? 16। और मैंने खुद देखा है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने उन चिन्हों को खुद देखा है कि भगवान के चरण कमलों में 16 चिन्ह हैं। ये जो भगवान के चरण कमलों में चिन्ह हैं ये वास्तव में भक्तों को वरदान प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे उनके चरण कमलों में कमल रहता है, कमल का अर्थ रहता है कि भगवान का जो भक्त होता है वो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी इससे अटैच नहीं होता, वो डिटैच रहता है। ऐसे भगवान के चरण कमलों में छतरी है, छाता, तो वो छाता क्या, छाता मतलब जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वो इंद्र की तरह फेमस हो जाता है, उसको यश प्राप्त होता है। ऐसे ही भगवान के चरण कमलों में मछली भी है, मछली का अर्थ है कि कोई कामदेव पर अगर विजय प्राप्त करना चाहता है तो भगवान का एक नाम है मकर ध्वज, भगवान उसको। तो इस तरीके से 16 चिन्ह जो है वो ब्रह्मा जी गिनाते हैं भगवान के चरण कमलों में। 16 शिवात चिन्हानी, 16 चिन्ह बताए गए हैं। तो आप ब्रह्मा जी बोलते हैं कि 4-5-6 चिन्ह तो आप अन्य अवतारों में भी देख सकते हैं लेकिन कृष्ण जो हैं उनके अंदर ही 16 चिन्ह पाए जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, ये देखिए। ये भगवान के अंदर, भगवान के चरण कमलों में 16 चिन्ह पाए जाते हैं। ओके, 16 चिन्हानी मया दृष्टादि तत्पदे, मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर 16 शुभ चिन्ह देखे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्णाख्यम तु परम ब्रह्म भुवि जातम न संशया त्रयम वायत चत्वारा पंच चैव च। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान के कई अवतारों के चरण कमलों पर 2-3-4-5 शुभ चिन्ह हो सकते हैं लेकिन सभी 16 चिन्ह किसके चरण कमलों पर हैं, केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों पर हैं। अभी मार्कंडेय ऋषि, वो भी भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करते हैं। मार्कंडेय ऋषि, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जब प्रलय होती है तो वो रहते हैं, प्रलय के समय वो विनष्ट नहीं होते। तो वो बोलते हैं एक बार वो पांडवों से मिले, मार्कंडेय ऋषि पांचों पांडवों से मिले। पांचों पांडवों से मिलते समय उन्होंने बोला, अरे जब प्रलय हुई तो मैंने देखा चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी पानी हर जगह पानी। मैं एक इधर से कोई लपेट पड़ती तो उधर गिरता, उधर से कोई इधर गिरता, इस तरीके से पूरे हर जगह मैं इधर से उधर भटक रहा था, बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। तभी मैंने देखा एक बरगद का पेड़, एक वटवृक्ष देखा मैंने। और जब मैं और नजदीक गया तो वटवृक्ष के एक पत्ते पे भगवान कृष्ण जो है लेटे हुए हैं, करारविंदेन पदारविंदम। उनके हाथों में करार, उनके हाथ हस्त कमल में अपना ही चरण कमल है। करारविंदेन पदारविंदम, पदारविंद। और क्या कर रहे हैं, मुख में उस के अंगूठे को, अपने चरण कमल के अंगूठे को मुख में डाले हुए हैं। मुखारविंदेन विनिवेशयंतम, अपने हस्त कमल से अपने चरण कमल को पकड़ के वो अपने ही मुख में, बच्चे लोग होते ना छोटे, वो अपने अंगूठा चूसते रहते हैं, ऐसे ही भगवान भी कर रहे हैं। जब मैंने भगवान को देखा तो मुझे इतना आनंद का अनुभव हुआ, इतना, ये देखिए मार्कंडेय ऋषि है, ये इतना आनंद का अनुभव हुआ, इतना आनंद का अनुभव हुआ कि पूछो मत। मैंने उनसे कहा कि आप कौन हो, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। फिर क्या किया, उन्होंने एक श्वास अंदर को खींचा, भगवान कृष्ण ने एक सांस अंदर को लिया, और सांस अंदर लेते ही क्या हुआ, मैं उनकी नाक में घुस गया, नाक में घुस के मैं चला गया उनके पेट के अंदर। अब उनके पेट के अंदर मैं देखता हूं समस्त ब्रह्मांड उनके पेट के अंदर है, सब कुछ है वहां पे। तभी उन्होंने क्या किया, सांस को बाहर छोड़ दिया, और जैसे सांस को बाहर छोड़ा मैं पटक दिया गया बाहर, मैं गिर पड़ा बाहर, सब कुछ था वहां पे। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब उन्होंने मार्कंडेय जी से कहा, तुम मेरे भक्त हो, सब लोग मुझे विष्णु कृष्ण और हरि के रूप में जानते हैं, मैं शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूं, तो इसलिए मार्कंडेय ऋषि भी ये प्रूव करते हैं कि कृष्ण जो है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान है। भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण, इनमें क्या है अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं। भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम बोला जाता है, पुरुषोत्तम, वो क्या है, पुरुषों में सबसे उत्तम। भगवान राम को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में जो पुरुष हैं उनमें वो सबसे उच्च हैं। और भगवान कृष्ण को क्या बोला जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये हैं भगवान कृष्ण। ओके, भीष्म देव, आपको पता है भीष्मदेव को अर्जुन ने दसवें दिन युद्ध के उनको सर सैया पे लिटा दिया, कई सारे बाणों से उनके शरीर को भेद दिया, और भीष्म जी इंतजार करने लगे कि कब उत्तरायण आएगा, उत्तरायण के दिन में अपना शरीर छोड़ूंगा। वास्तव में उत्तरायण भगवान कृष्ण का भी नाम है। तो भीष्म चाहते थे कि जब कृष्ण मेरे सामने आएंगे तब मैं देह छोड़ूंगा अपना, तब मैं मरूंगा। तो उसी समय भीष्म आते हैं, तो वो भी भीष्म, जब भगवान कृष्ण आते हैं तो भीष्म इन सारे पांडवों से बोलते हैं, जो तुम्हारे साथ लीलाएं कर रहा है, जो तुम्हारे साथ भाइयों जैसा व्यवहार कर रहा है, ये कृष्ण कोई और नहीं है, आद्यम पुरुषम आद्यो नारायण। ये कौन है, नारायण का भी आदि है, नारायण भी इनसे निकले हुए हैं, ये है कृष्ण। जैसे कोई मोमबत्ती है तो एक मोमबत्ती जलाई आप उससे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कई सारी मोमबत्तियां जला सकते, पर एक मोमबत्ती जो है वो पहली मोमबत्ती, हालांकि सब देखने में एक ही जैसी हैं, लेकिन एक मोमबत्ती ऐसी है जिससे सारी मोमबत्तियां जली हैं, वो कृष्ण है। क्या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो यहां लिखा है अब नारायण को शिव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य के स्रोत के रूप में स्थापित करते हुए हम देखेंगे कि श्री कृष्ण प्रथम नारायण कैसे हैं। एस वह भगवान साक्षाद्यो नारायण पुमान मोहयन मया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुसु। ये श्री कृष्ण जो है अकल्पनीय आदि भगवान हैं, ये प्रथम नारायण अथवा परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा विष्णु के वंशजों में हमारी तरह ही विचरण कर रहे हैं और हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो टोटल 64 गुण होते हैं, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, फॉन्ट्स थोड़ा ऐसे हैं। 64 गुण टोटल होते हैं, उसमें ब्रह्मा जी के पास टोटल 50 गुण हैं, भगवान शिव के पास 55 गुण हैं, भगवान विष्णु के पास 60 गुण हैं और भगवान कृष्ण 64 के 64 गुणों को अपने पास रखते हैं। विष्णु से 4 गुण उनके पास ज्यादा हैं, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और रूप माधुरी, इनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। ये 4 विशेष गुण अद्भुत लीलाओं में लीला माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, असामान्य सौंदर्य, इतना सुंदर है, केवल मनुष्य ही उनसे आकर्षित होते हैं ऐसा नहीं, गाय, बछड़े, पेड़ पौधे, पुष्प सब भगवान से आकर्षित होते हैं, इतना विशेष है भगवान। इसलिए कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। चलिए ये हमारी आज की सीखें हैं, इनको थोड़ा गांठ बांध लीजिए। पहला, कृष्ण भले ही मानव रूप में प्रकट होते हैं लेकिन उनका जो रूप है वो दिव्य है, उनका दिव्य रूप होता है, उनका शरीर जो है वो दिव्य है, उनका स्वरूप जो है वो दिव्य है। दूसरा, सभी देवता गण जो है वो भगवान कृष्ण के कंट्रोल में रहते हैं, भगवान जैसा चाहते हैं वो वैसा करते हैं। जैसे कोई कंपनी का मालिक होता है तो कंपनी का मालिक के अंडर में कंपनी के सारे एम्प्लॉय होते हैं, वैसे ही। और भगवान के पास 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, 6 के 6 ऐश्वर्य। साथ साथ में कृष्ण के जो भक्त हैं वो हमेशा सेफ रहते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं कर पाता कुछ भी। कृष्ण का जन्म और गतिविधियां दिव्य हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनका जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण के पास 4 ऐसे गुण हैं जो भगवान विष्णु में नहीं है। भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं और भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो हमारा सेशन आज यहां तक ही है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और नहीं है तो हम प्रश्न पूछेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न? Yes,
भगवान राम जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार हैं या भगवान श्री कृष्ण?
देखिए, अभी हमने बताया कि कृष्ण जो है मेन है, स्रोत हैं और उनसे विष्णु निकले हुए हैं। अभी जितने भी अवतार आते हैं, चाहे भगवान राम हो, चाहे नरसिंह भगवान हो, वामन देव, वो सब विष्णु से आते हैं। तो स्रोत कृष्ण है, फिर विष्णु और विष्णु से सारे अवतार निकलते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? देखिए, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं जान पाएंगे तो हम भगवद गीता को उतना नहीं समझ पाएंगे जितना हमें समझना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कृष्ण को एज इट इज समझें कि कृष्ण कौन है।